ओम शांति, ओम शांति। रचयिता बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय दुनिया में न रचयिता बाप को कोई जानता है, न उसकी ये रचना क्या है, कैसी है, उसके बारे में जानता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे कि न परमात्मा को लोग जानते हैं और न ही आत्मा को जानते हैं, दोनों को ही नहीं जानते हैं। और दोनों के बारे में कितनी मतें हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है जितने मुख उतनी बातें, ईश्वर के लिए कितनी बातें, एक एक अपने मंतव्य बताते हैं। फिर आत्मा के बारे में भी बहुत ही विचार है, कितने विचार आत्मा के बारे में भी है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अपना और अपनी रचना का भेद खुद ही बताता हूँ। कई कहते हैं ना, आप लोग कैसे कहते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो ज्ञान ही साबित करता है कि ये कौन दे सकता है, कोई देहधारी तो दे नहीं सकता है, किसी शास्त्र से तो लिया नहीं है, किसी मनुष्य के तो ये वाक्य है ही नहीं, लेकिन ये स्वयं भगवान अपना परिचय और अपनी रचना का परिचय देते हैं। और कितने राज रोज रोज बाबा हर मुरली में खोलते हैं, कितनी पॉइंट समय मिलती है। तो आज भी बाबा ने वो राज स्पष्ट किए हैं जो हम बाबा के महावाक्यों से सुनेंगे। आज 25/4/2026 है। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो बाप दूर देश से आए हैं किस लिए? तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। चढ़े नशा चढ़ना चाहिए कि वो बाप जो दूर देश का रहने वाला है, वो इस पराये देश में आया है बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, उस नई दुनिया के लिए लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उस दिन बाबा ने चार प्रकार का निश्चय बताया, खुद में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, परिवार में भी निश्चय, लेकिन आज बाबा ने केवल एक ही निश्चय की बात कर रहे हैं। जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? हमें पता, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें श्रीमद दे रहे हैं, ये अटूट निश्चय है। कहेंगे ना, अटूट निश्चय है ना, जो समझते अटूट निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो टाइम देखो, तभी तो रोज सुबह सुबह जल्दी जल्दी दौड़ कर आते हैं बाबा की मुरली सुनने। तो उनकी निशानी क्या होगी, कैसे पता चले कि हम अटूट निश्चय है? खाली निश्चय नहीं, अटूट निश्चय। अटूट निश्चय माना बहुत बड़ी बात, कभी टूटने वाला निश्चय नहीं। किसने कुछ कह दिया, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो निश्चय टूट गया, नहीं। तो अटूट निश्चय की निशानी क्या होगी, बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। उत्तर है, वो आंख बंद करके भी बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। ये बाबा कैसे कहते हैं, बाबा ने ये क्यों कहा है, हाँ बाबा को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये जो ये भी जो सोचते रहे, ये भी निश्चय की कमी है। तो वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे जो आज्ञा मिले। उस दिन भी बाबा ने कहा जो हुक्म, जी बाबा जो हुक्म, वो जो आज्ञा मिले। हाँ, बाबा कहते आंख बंद करके भी बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। कभी उनको ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कहीं कुछ नुकसान न हो जाए। बाबा ने कहा तो है परंतु पता नहीं इसमें कुछ नुकसान तो न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। इतने निश्चय बुद्धि है जो कभी संशय नहीं उठेगा कि ऐसे बाबा ने कहा है, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा। क्यों नहीं उसको उनको संकल्प उठेगा, क्योंकि उनका जिम्मेदार बाबा बन जाता है। तो बाबा उनकी जिम्मेदारी ले लेता है क्योंकि बाबा में अटूट निश्चय है। क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बाप है, उन्हें निश्चय का फिर बल मिल जाता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी, जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। कौन है वो माता पिता? हम एक व्यक्ति से मिले, हमने कहा परमात्मा हमारे माता पिता है, तो वो मानने को ही तैयार नहीं कि वो माता पिता है। वो कहेगा कैसे कहेंगे माता पिता, वो तो मालिक है, बस मालिक है। मालिक शब्द उसकी बुद्धि में से निकलता ही नहीं था, मालिक है। पर वो हमारे माता पिता है माना नहीं। फिर उनको कहा कि माता पिता क्यों कहते हैं उनको, तब थोड़ा थोड़ा बुद्धि में आया। जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है, ये है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं दुनिया में, किसकी भी महिमा करते हैं, वो बाबा कहते हैं फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान नहीं है। आत्मा के बारे में भी कितनी बातें सुनाते हैं, भल कहते हैं महान आत्मा जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है। अब ये भी समझने की बात है कि आत्मा ही सब कर्तव्य करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूं। देह अभिमान में मैं फलाना हूं, मैं ये करता हूं। वो देह समझते ये देह कर रही तो मैं ये करता हूं। वास्तव में करती तो सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है जो भ्रकुटि के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है। ये पता है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, प्रकृति के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार है। क्योंकि क्यों नहीं समझते कि आत्मा में पाठ बजाने के संस्कार है? कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार तो होते ही नहीं है। क्यों? आत्मा तो निर्लेप है, जब आत्मा में फिर संस्कार कैसे आए? पाप पुण्य और ये सुख दुख, ये जो भी संस्कार है कर्म और उसका फल, ये सब संस्कार आत्मा में है। तो कई समझते आत्मा तो निर्लेप है। फिर कोई कहते हैं संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है, ये भी फिर कहते हैं। तो आत्मा वो संस्कार ले जाती है और फिर अगला जन्म उनको उसी अनुसार मिलता है, तो आत्मा को ही मिलता है। तो आत्मा ही ले जाती है संस्कार, और कोई कहते आत्मा में कोई संस्कार है ही नहीं, वो तो निर्लेप है। देखो मतभेद बहुत है, ये भी किसको पता नहीं है कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। अब ये उनसे आगे क्या ज्ञान, चलो मान भी लिया आत्मा प्रकृति में रहती है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, फिर आत्मा में ये 84 जन्मों का संस्कार है, 84 जन्म लेती है, पर कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है फिर उसका डिटेल बाबा कहते वो तो कोई भी नहीं जानता। तुम जानते हो कि सूर्य वंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है, आत्मा ही 84 का चक्र लगाकर पतित बनती है। अब ये भी कोई नहीं समझते कि आत्मा 84 का चक्र लगाकर पतित बनती है, क्योंकि वो तो समझते आत्मा तो कोई पतित बनती ही नहीं है। उसको अब पावन कौन बनाए, चलो समझ भी लिया पतित बनती है तो पावन कौन बनाए। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा भी सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते। सब आत्मा इकट्ठी आ जाए परमधाम से सतयुग के आदि में तो सब 84 जन्म ले, लेकिन सब तो इकट्ठे नहीं आते। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उनके 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83 कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, एकदम बुढ़ापे तक जीते हैं, 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके, लॉ नहीं कहता कि कोई जल्दी मरे, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। क्या परिचय देते हैं बाबा अपना, पहले आत्मा का परिचय दिया फिर परमात्मा अपना परिचय देते, जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ क्या अंतर है आत्मा और परमात्मा में, आत्मा भी ज्योति बिंदु परमात्मा भी ज्योति बिंदु, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं, ये अंतर है। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं, प्रश्न तो बहुत पूछते हैं ना, तो पूछते हैं ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, हम कैसे माने कि परमात्मा आते हैं। तो उनको समझाना है कि सब पुकारते हैं, अब कैसे समझाओ उनको कि सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, पुकारते हैं। अभी कोई कहे कैसे आते हैं, अरे तुम ही पुकारते हो कि आओ। अब वो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे ना, ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, बिंदी है, परंतु वो है, वो भी बिंदी है, लेकिन क्या अंतर है, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, तो पुकारते हो, हाँ परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आऊंगा ना, पुकारते हो आओ तो जरूर मैं आऊंगा ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है, क्या मालूम पड़ा है बाप द्वारा, कि अभी हम पराई देश अर्थात रावण के देश में है। केवल भगवान ही नहीं पराई देश में आता, ये रावण का देश है, पर हम आत्माएं भी इस पराई देश में बैठी है, अर्थात ये रावण का देश है। सतयुग त्रेता को पराया देश नहीं कहेंगे, सतयुग त्रेता को क्या कहेंगे? सतयुग त्रेता में तो हम ईश्वरीय देश, जो भगवान ने स्थापन किया देश, उस देश में रहते हैं। तो सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो उन्होंने जो देश स्थापन किया, दुनिया स्थापन की, उसमें उसके हैं हम, अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराए देश पराए राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। क्यों आते हैं पराए देश में, क्यों आते हैं? बाबा कहते हैं ये तो खेल है, गिरती कला, हर चीज की गिरती कला होती है। वाम मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं, वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। अभी तुमने समझाया, तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है, क्या समानता है, क्या फर्क है, दोनों पता है ना? समानता भी बहुत है ना, तीन बातों में समानता है। एक तो रूप की समानता, एक धाम की समानता, वही घर है हमारा जो बाप का घर है, और एक ही जैसा रूप है जो बाप का जैसा रूप है, और एक ही जैसे गुण है जो भगवान के गुण है, आत्मा के अंदर भी वही गुण है। तो बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, बाबा नहीं आते हैं, भगवान नहीं आते हैं चक्र में, ये बहुत बड़ा फर्क है। वो नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर, आनंद का सागर है, ये परम आत्मा की महिमा है ना। सुख का सागर, आनंद का सागर, ये आत्मा की महिमा नहीं है, ये परमात्मा की महिमा है। अब बुलाते हैं कि हे पति पावन आओ, वो है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाला मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो नहीं बुलाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाओ, सरस्वती जी आ जाओ, नहीं, हे परमात्मा आ जाओ, उनको बुलाते हैं। आत्मा ब्रह्मा सरस्वती को तो नहीं बुलाते हैं ना, हाँ क्यों नहीं बुलाते हो, तो यहाँ के ही है, परंतु जो यहाँ का नहीं है उनको बुलाते हैं। पुकारते हैं निराकार परमात्मा को, आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए। क्यों क्यों देश पर आए आओ? क्योंकि सब पतित बन चुके हैं, सब पतित बन चुके हैं, मैं भी आऊंगा तब। बाबा अपना वायदा बताते हैं, मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा, मैं आता भी हूँ संगम युगे, ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वो परम आत्मा बिंदी है, आजकल फिर क्या कह देते हैं, आजकल कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आत्मा सो परमात्मा तो हो न सके, कई कारण बताते हैं ना क्यों आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है जरूर, परंतु आत्मा तो पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है आत्मा को। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहें, मानो कोई कहते ना आत्मा सो परमात्मा, तो क्या परमात्मा सतो प्रधान और फिर तमो प्रधान में आता है क्या? क्योंकि आत्मा तो सतो प्रधान भी बनती है, तमो प्रधान भी बनती है, तो क्या परमात्मा भी सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनता है क्या? नहीं, ये तो हो न सके। तो बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ बहुत बड़ा काम करने, कौन सा? सर्व आत्माओं की सर्विस करने, बहुत बड़ी सर्विस करने भगवान को आना पड़ता है आत्माओं की। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता है, मैं आता ही हूँ नर्क वासियों को स्वर्गवासी बनाने, पराए देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने, पराए देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं, तो ये भी समझाया है कि आत्माओं का, और ये भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है, सब आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं। क्या निशानी है उसकी कि परमात्मा आते हैं? तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, ये सिद्ध करता है कि परमात्मा आते हैं, शिव आते हैं, लेकिन वो कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे, ऐसे तो नहीं ना कभी भी आ जाए, जरूर उनका टाइम भी तो मुकर्र होगा आने का, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं आएंगे ना, लेकिन कोई महान कार्य करने के लिए आएंगे तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। अब जब पतित बनना शुरू हुए तब परमात्मा कैसे आएंगे? जब एकदम पतित बन जाए तभी तो आएंगे ना और पावन बनाएंगे। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते भी हैं, पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, जब एकदम पतित बन जाते हैं तब पुकारते हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आते हैं तो जरूर बाबा कहते उस समय फिर पतित दुनिया का विनाश होगा, विनाश का समय होगा, तभी तो पावन दुनिया स्थापन करेंगे ना। युगे युगे तो नहीं आते हैं, अब ये भी नेक्स्ट बात है, कितना बड़ा घोटाला है, क्या क्या परमात्मा के लिए कहते कब आते हैं, कोई कहते तो वो तो आते ही नहीं है, कोई कहते वो तो यहाँ ही है, फिर वो कहते एक ही बार आते हैं, फिर कहते चार हर युग में आते हैं, तो चार युग हो गए तो चार बार आए, फिर कहते दस अवतार तो दस बार आए, फिर कहते चौबीस अवतार तो चौबीस बार आए, और फिर कहते वो तो सर्वव्यापी, अब है यहाँ तो आने की तो बात ही नहीं। तो देखो बाबा कहते कितनी मते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो युगे युगे तो नहीं आते हैं। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है, ये पराया देश है, रावण का देश है, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है, ये भी नहीं जानते हैं मनुष्य कि ये रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं, तो पहली पहली मुख्य बात क्या समझानी है, आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है, फिर समझाना है कि ये कल्प की वो कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने, ये काम उनका ही है, पतितों को पावन बनाना ये काम केवल एक परमात्मा का है, न कि श्री कृष्ण का, ये श्री कृष्ण का काम ही नहीं है पतितों को पावन बनाना। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी सब नीचे उतरते, केवल उस श्री कृष्ण की आत्मा थोड़ी, सब जो भी सूर्यवंशी में होते हैं वो सब नीचे उतरते हैं, झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा, अब ये भी एक राज है, आधा ताजा और आधा पुराना थोड़ी होगा, जो बाद में आते हैं वो थोड़ी कोई उस समय उनके लिए झाड़ ताजा होगा, उनके लिए भी तो वो पुराना ही झाड़ है, वो पुरानी झाड़ में आते हैं, पर जो सतयुग आदि में आएंगे वो नई झाड़ में आते हैं, धीरे धीरे पुराना होता है तो जो बाद में आते वो पुराने झाड़ में आएंगे, ऐसे थोड़ी उनके लिए वो नया झाड़ होगा। तो बाबा कहते हैं झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा, जल जड़ी भूत अवस्था तो सबकी होती है, कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है, शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी आयु दे दी है। अब ये भी देखो कितनी मते हैं, कल्प की आयु के बारे में भी कितनी मते हैं, लंबी चौड़ी आयु दे दी है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ ही नहीं सकते हैं। क्या प्रश्न पूछेंगे, भगवान आकर सब अपनी रचना का भेद खुद बताते हैं तो क्या प्रश्न उठेंगे। रचयिता बाप सची बोलेंगे ना, अब झूठ थोड़ी बोलेंगे, सची बोलते हैं ना। हम इतने बीके हैं हम सब मानते हैं तो सची सची होगा ना, इतने हम सब मानते हैं तो जरूर है, तब तो मानते हैं, हाँ है ना सच, तभी तो हम मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। अभी प्रश्न करते हैं संशय करते हैं, बाबा कहते हैं आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को ये समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु फिर उसके बाद अगला प्रश्न, परंतु फिर किस शरीर में आए। चलो दूर देश से आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, परंतु फिर कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, परंतु किस शरीर में आए, क्या सूक्ष्म वतन में आए। सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, चलो ब्रह्मा तन में आते हैं, पर ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी है तो क्या सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा के उसमें आएंगे, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ चाहिए ना, अब ब्रह्मा कौन है ये भी कोई नहीं जानते। जगत पिता ब्रह्मा तो कहते हैं, पुष्कर में जाएंगे, पुष्कर में ब्रह्मा का बहुत बड़ा मंदिर है तो वहाँ ऊपर से लिखा हुआ है हाँ जगत पिता ब्रह्मा, कितनी उनकी पूजा करते हैं, परंतु वो ब्रह्मा कौन है ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं। जिसने प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानता था। हमारा बाबा का बहुत अच्छा म्यूजियम बिल्कुल वो पुष्कर का जो मंदिर है उसके पास में ही बना हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर है। हाँ, कौन गए हैं पुष्कर, जो पुष्कर गए हैं हाथ उठाए, अच्छा इतने सारे गए, जरूर जाना चाहिए, अपने पिता का यादगार देखना चाहिए ना जरूर। फिर स्वर्ग का भी यादगार है अजमेर में, वो भी जरूर देखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कौन है ये भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसने प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। बाबा को थोड़ी पता था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं मेरा ही पहला वो जन्म श्री कृष्ण का भी अंतिम जन्म है, तो कुछ भी नहीं जानता था ब्रह्मा बाबा। तो जिसने प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे, हम आत्माएं भी अपने जन्मों को नहीं जानती थी, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं, हम समझते थोड़ी थे, बच्चे भी हम तब बनते हैं जब मैं एडॉप्ट करता हूँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं अपना बनाते हैं, तब हम समझते हैं बरोबर हम शिव बाबा के भी बच्चे हैं ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं। तो बच्चे भी तब बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं एडॉप्ट करता हूँ, मैं इन यानी साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ। साकार बाबा को भी कुछ पता नहीं था तो शिव बाबा सब बच्चों को साकार ब्रह्मा बाबा सहित सबको समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, है ना। गीता में लिखा अर्जुन को भगवान कहते तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही बताता हूँ, तो क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है फिर रिपीट होगा, मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, और उसके लिए क्या करता हूँ, कैसे पावन बनाता हूँ, राजयोग सिखाकर। कैसे राजयोग से कैसे पावन बनते हैं, राजयोग सिखाकर क्या कहता हूँ, अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, जिससे तुम पावन बनोगे। तो मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने लिए। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते हो, ये नहीं जानते ना राज, अगर के परमात्मा के सिवाय कोई पावन नहीं बना सकता, ये अगर राज सब जानते हो तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते ही नहीं। इतने मेले लगते हैं, मेलों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नदियों में नहाते हैं पावन बनने के लिए। अगर ये मालूम हो कि केवल परमात्मा की याद से ही पावन बन सकते हैं तो इन मेलों में वो जाए नहीं, तो मेलों आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। भवन एक बार का मछलियां तो पानी में रहती हो तो पहले ही पावन बन जाए हा? तो इसलिए बाबा कहते हैं पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते ही रहते हैं। द्वापुर से लेकर करते आए, द्वापुर से लेकर करते आए, समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश होते नहीं है। ये अथॉरिटी के बोल है, ये कौन बोल सकता है, मनुष्य नहीं बोल सकता, वो तो डरेगा बोलने में, लेकिन भगवान तो बोल सकते हैं ना कि कोई भी पाप नाश नहीं होते हैं गंगा में टुक्की मारने से। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। अब भक्ति के बाद भगवान को आना है, समझते भी है, भक्ति करते करते आखिर भगवान मिलेगा, तो भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तो बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है, क्या शास्त्रों में है कि भगवान को संकल्प उठा, संकल्प उठा कि अब मैं नई सृष्टि को रचूं, तो ब्रह्मा को रचा। हाँ, तो कहेंगे ब्रह्मा को संकल्प हुआ, परमात्मा को संकल्प हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं, फिर ब्रह्मा को संकल्प उठा मैं सृष्टि रचूं। तो शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। जब नई सृष्टि रचने का समय आता है तब संकल्प उठता है कि मैं जाऊं और नई सृष्टि रचनी है, तो ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। वहां तो समय से प्रलय हो जाती है, फिर भगवान को संकल्प उठता कि मैं जाऊं। तो बाबा कहते हैं जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन बाप समझाते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्यते गुह्य बातें बताता हूँ, सुनते सुनते तुम समझते जाते हो। गुह्यते गुह्य बातें रोज समझाता जाता हूँ और तुम सुनते सुनते समझते जाते हो। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी तो अच्छी रीति समझ गए। बस पहले तो आत्मा का ही पाठ था ना, यज्ञ के शुरू में तो आत्मा का ही पाठ था, खुद खुदा कुछ समझ में तो आया नहीं, तो इसलिए कुछ इतनी समझ इतनी नहीं थी, भले आत्मा का पाठ पढ़ते थे। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको, आगे ऐसे नहीं कहते थे शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं कि कौन हमें समझा रहा है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। और भी समझने का बहुत पड़ा है, और भी समझने का बहुत पड़ा है, रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले तो ये निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते, ये ज्ञान बेहद का बाप समझाते हैं तो जरूर वो सत्य ही बताएंगे। अब वो सत्य बाप है तो सत्य ही बताएंगे। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। अब कच्चा है तो समझा भी नहीं सकेगा, अभी खुद ही कच्चा है, खुद ही डावाडोल हो रहा है, निश्चय पक्का नहीं है, तो वो फिर दूसरों को समझा भी कैसे सकेगा। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। ये तो स्कूल में भी नंबर वार होता है, बहुतों को ये संशय पड़ता है, आते ना संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। क्योंकि क्यों ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में है कि ये तो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। अगर हम कहते गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव है, वो समझते नहीं है। अगर हम कहते भी ये ज्ञान कहाँ से है, तो हम कहेंगे भाई गीता का ज्ञान तो वो तो श्री कृष्ण ने दिया, और आप तो कहते शिव ने दिया, तो उसमें फिर मुंह जाते हैं। तो उनको सिद्ध तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता है, अब ये भी बताना पड़े। चलो श्री कृष्ण ने दिया, पर वो पतित दुनिया में आकर देवे तो श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ही नहीं सकता। ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, हर एक समझाएगा भी अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार। कोई तो झट समझ जाते हैं, तो जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, ब्राह्मणों में भी वैरायटी है, समझाने का तरीका भी अलग अलग है सबका। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु एक बात कॉमन है, हाँ कौन सी, परंतु दे अभिमान बच्चों में बहुत है, ये सब बच्चों में है। हाँ बाकी तो बाबा कहते एक जैसे नहीं होते, हाँ दे अभिमान भी नंबर वार होगा। तो परंतु दे अभिमान बच्चों में बहुत है, ये बाबा भी जानते हैं कि नंबर वार है सब। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े, बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कह रहा है चलो ये नहीं मानो, शिव बाबा कह रहा है वो बड़ा बाबा है उसका तो मानो। तो बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए। गुरु आदि की तो मानते आयो, उनकी तो मानते आयो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, है इतना निश्चय, आंख बंद कर माननी चाहिए। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भल उनमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। भगवान ने ये कहा है मान लेना चाहिए, भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका ये रथ है वो ठीक कर देंगे। चलो भले इन्होंने भी कहा, पर ये तो शिव बाबा का रथ है ना, तो शिव बाबा ठीक कर देंगे। और सचमुच हमने देखा है, बस बाबा ने उनको कहा और सचमुच उस पर चले, तो उस समय लगा बाबा कह तो रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा, परंतु श्रीमद का पूरा पालन किया तो कितना कल्याण हो गया, ये कईयों के अनुभव है। तो बाबा कहते हैं वो ठीक कर देंगे। कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, सेठ बैठा है, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही समझो, भले समझो ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं जानते। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी, निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। विकर्म भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है। अब देह अभिमान बहुत रहता है तो जिसमें बहुत देह अभिमान होगा ना वो कैसे बात करता है। और देखो ब्रह्मा बाबा सबसे कितना प्यार से चलते थे। भले कोई कितना भी देह अभिमान से बाबा से बात करता था लेकिन बाबा बहुत नम्र बहुत प्यार से बात करते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है। सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, हाँ सब ठीक हो। बाबा तो जाते थे रात को चक्कर भी लगाते थे कि बच्चों को सब ठंडी के दिनों में कंबल मिला, ये मिला, पानी मिला, सब मिला। बाबा सब पूछते थे। तो बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है, बहुत प्यार है बच्चों का, बच्चों के लिए। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। अब जितनी जितना कितना प्यार खींचते हैं, बाबा तो प्यार देते हैं पर जो खींचते कितना है वो उस आत्मा पर निर्भर है। तो जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है, हड्डियां देनी है सर्विस में। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। बाबा की सेवा में जुटे हैं, सर्विस करते रहते हैं, आज्ञाकारी है तो बाबा भी क्या कहेंगे, कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। बाबा देखेंगे ना ये कैसी सर्विस करता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु फिर बाबा हर वक्त परंतु भी कहते हैं, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है। भट्टी में आए है ना, कल बताए ना आपको कैसे यहाँ तो समझेंगे मैं बहुत पक्का हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया, लेकिन वहाँ माया इंतजार कर रही है। लेकिन हाँ माया के वश नहीं होना, वो कहेगी मैं आऊँ मैं आऊँ, तो माया को आने नहीं देना, रास्ता नहीं देना, उनको चाय पानी नहीं पिलाना। तो बाबा कहते हैं परंतु चलते चलते किस पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा न सके। अब ग्रहचारी बैठी है तो ज्ञान उठा न सके। कई तो फिर कर्मणा सेवा भी अथक होकर करते, अथक होकर कर्मणा सेवा भी करते, वाचा भी करते, मनसा भी करते, और कोई तो ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं करते है ना। तो कई तो फिर कर्मणा सेवा भी अथक होकर करते हैं। अब तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना। क्या काम मिला बाबा ने, क्या काम दिया, सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। ज्ञान पूरा है नहीं तो क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं और दुख देते रहते हैं, तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं हैं। तो पहले पहले अब बाबा वापस पहली पॉइंट पर आ गए, पहले पहले समझानी देनी है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये पहली समझानी किसी नए को देनी है। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में मूंधा हुआ है ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। पक्का निश्चय है कि ड्रामा में सबका पार्ट मूंधा हुआ है। हिलता क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो हिल जाते हैं। परंतु हर एक का पार्ट निश्चित है, इसीलिए निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं, बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे, भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, तो क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि उसमें खुद देखेंगे ना कि ये सब देखो क्या हो रहा है, तो उनको होगा कि मैं जल्दी ये ज्ञान समझ लूं, बाबा को याद करूं, तो अचल हो जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़ते रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। तो अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। अब ये सब बातें हैं तब बाबा की नजरों में अच्छे बच्चे हैं। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्यों, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिकर नहीं करना है। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले सुख बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। सूक्ष्म बंधन भी है और कड़े बंधन भी है, तो दोनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त, जो योग युक्त होगा वो बंधन मुक्त भी होगा। अब योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है, कौन सा बड़ा बंधन है योग युक्त जो बनने नहीं देता, योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना है। वो श्रीमत उस अनुसार ज्ञान देते, अपनी बुद्धि की कमाल समझना कि मैं तो बहुत अच्छा समझाता हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, मैं कितनी होशियार हूँ। तो बाबा कहते ये भी अपने आप को बहुत समझदार समझना, स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। तो ये भी बाबा कहते हैं एक बंधन है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है, आपको कोई इशारा देता है कि ये गलत कर रहे हो, तो वही आपकी कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। एक तो अपनी बुद्धि का अभिमान, मैं बहुत होशियार हूँ, और दूसरा यदि किसने आपको करेक्ट भी किया तो उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी ये बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। सोच समझ कर कर्म करना, तो पहले सोचना फिर करना, ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत जैसे एक अनजान बच्चा उसको पता नहीं, तो अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है। अब उसके हाथ में चाकू होगा और वो समझता है तो खिलौना है, तो वो नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, कोई और चीज देकर के छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, अब वो चाहता है मुझे मान मिले शान मिले मेरी महिमा हो, तो चलो वो ये इच्छा रखते हैं, तो उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ, मान दो उनको निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा, इसीलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं महसूस करे कि ये बात नुकसान कारक है। पर वो समझता ही नहीं है तो क्या करो, छोड़ दो, पीछे नहीं पड़ो। जिससे वो स्वयं महसूस करे कि वो बात नुकसान कारक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सब भट्टी वाले जा रहे हैं, हाँ सभी जा रहे हैं, कोई रुकने वाले भी है क्या? अच्छा, दो चार सेवा में रुकेंगे। चलो, गो सुन कम सुन, आओ जो सब गुजरात के है ना, आओ जो। बहुत अच्छा, अच्छा लगा। हाँ, कल थोड़ा अनुभव की लेन देन की। चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। ओम शांति। चलो बाबा की याद।